أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب نے جواب دیا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کوئی فرق تھا پہلے سلام اور اس میں جواب میں؟ کیا آیت پڑھی ہم نے سورۃ نساء میں؟ کوئی حوالہ بولے؟ آج کے ٹیسٹ میں یہ حصہ تھا. وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تو ردوہا ہی کر دیا کریں اگر آپ کا احسن پہ دل نہ کر رہا ہو تو. ٹھیک ہے, چلیے. بہت ہی خوبصورت سبق اور آج پارے کا آخری لیسن ہے. بہت زیادہ دل کو اداس کرنے والا اور اپنا محاسبہ کرنے والا سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمارے وقت میں, علم میں, فہم میں اور عمل میں اور سب سے بڑھ کے یقین میں برکت دے دے, کیونکہ آج ہم بہت سارے مراحل دیکھنے والے ہیں کہ ایمان کس طرح یقین میں ڈھلتا ہے. کچھ پچھلے سبق کے بارے میں ایک دو باتیں صرف مختصر سی تھی. ایک کمنٹ ہے کسی کا کہ مجھے آج کے سبق سے ایسا محسوس ہوا کہ اس پیارے اور کریم رب کی پہچان اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے اس کے پاک کلام کے ذریعے. صاف والا اور رحم دلی کرنے والا ہے. اگر انسان شعور پیدا کر لے تو اس کی بے شمار نعمتوں سے اس کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. آج تو ایسا لگتا ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات کا یہ صدا لگاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کرتی ہوں کہ اس کلام سے اللہ کے تمام بندے جڑ جائیں. آمین. دعا بھی کرنی ہے ہم نے اور کوشش بھی کرنی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں حقیقت میں واقعی چپ لگا دیتی ہے. یہ ایک اور کمنٹ ہے, یہ بیسیکلی تھرسڈے کے لیسن سے تھا. زبان کی حفاظت کرنی ہے. کچھ عرصہ اس ملک کے پرائمری اسکول میں کام کرنے کا موقع ملا تو وہ چھوٹے بچوں کو بار بار یہ فکرہ سمجھا رہے تھے کہ زپ اپ یور ماؤتھ اوپن یور ایئرز. چپ رہنا سکھاتے ہیں نا, خاموش رہو, سائلنٹ ٹائم, ہاں زپ ٹائم. یہ فکرہ دماغ میں جم کر رہ گیا ہوا ہے. قدرت کی فطرت میں ہے کہ منہ بند نہیں ہوتا. منہ بند ہو جائے تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. زپ کو پلیز کچھ ٹپس بتا دیں, جب پیٹ درد ہو تو کیا کریں. میرے پاس اس کے لیے صرف ایک آیت کا ٹکڑا ہے, چھوٹا سا. سورۃ قاف کی غالباً آیت 14 یا شروع کے اندر ہی آ جاتی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کو لکھنے والا فوراً لپک کے لکھ لیتا ہے. اور اگر آپ وہ لیکچر سننا چاہیں کہ میری کتاب اور رب کی, اللہ کی کتاب اور میرا نام اعمال, یعنی اللہ's book and my books, یہ میں نے کویت میں قطر میں دیا تھا چند مہینے پہلے. تو اس میں میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ جس عورت نے 40 سال تک زبان سے قرآن کے سوا کچھ نہیں بولا. تو یہ یقین آ جائے کہ میرا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے تو بندے کی بولی ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے. نولی ہی ما تولا, اس پہ یہ کمنٹ ہے کہ اپنے لیے صحیح سمت متعین کرنی ہے. اچھا, متعین تو ایسے نہیں ہوتا, تے سے ہوتا ہے, یہ رکھیے گا. آپ کی اردو پڑھ کے بعد مجھے شک ہو جاتا ہے کہ شاید میری غلط ہے, لیکن یہ اصلاح بھی میرا ہی مقصد, میرا ہی کام ہے کہ آپ کی اس چھوٹی سی بات کو کروں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ نے غلط لکھا ہے. ہاں, یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے. تو صحیح سمت متعین کرنی ہے, کیونکہ جو سمت ہم چنیں گے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں آسانیاں دے دیتے ہیں. آج نجوہ کے بارے میں سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے. جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھ کر دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں, اپنی زبان کا چٹخارہ برا کرتے ہیں. آج اس کے اثرات سن کر دل کانپ گیا. استاذہ جی, ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ عام غیبت اور نجوہ کی سزا ایک جیسی ہے یا نجوہ کی سزا زیادہ ہے؟ آپ سوچیں کیا ہوتے ہیں, اس کی وہ بات کر دیتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہے نہیں, بس کر دی. غیبت غیبت تب ہوتی ہے جو صرف زبان کا چسکا ہے, ہمارے اس کے بیچ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کریں, بس عادت ہے چسکے کے طور پہ. کیونکہ جب گھر توڑوانا یا اگلے کو نقصان دینا مطلوب ہو جائے تو پھر وہ چغل خوری میں ڈھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, نجوہ میں کیا ہے, پورا کا پورا سسٹم بگڑتا ہے. और याद रखिए वल अलफितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, उसी हदीस को उसी आयत को सामने रख लें सूरह बकरा की। तो कत्ल में जो एक शख्स मरता है ना, और जब किसी माशरे में फितना फैलता है तो कितने ही लोग कत्ल हो जाते हैं, तो लिहाजा जिस लेवल का कोई गुनाह है उसकी सजा भी उतनी ही होती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने ऊपर मोहरे लगाने वाला बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप देखिए कि हमारे कल के सबक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकदम खलील नहीं बने, बहुत कुछ हुआ। हम कहते हैं कि इसके लिए शुरू कहाँ से करें, हमारे पास अब गाइडलाइन है क्या, कि जो बात सुने उसको माननी शुरू हो जाए। असलमो, बड़ी बड़ी बातों के इंतजार में छोटी छोटी चीजें ना छोड़ें। बस लोगों को बहुत शौक होता है हज पे जाने का और यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ते, नबी के रोजे को देखने और छूने का शौक होता है लेकिन यहाँ छोटी छोटी सुन्नतों को नहीं मानते। आप जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करते हैं तो आपके जहन में कैसे आते हैं, एकदम वो भागने लग गए, नहीं चले, कैसा गेटअप आता है उनका। हम भी अपना वैसा बना सकते हैं, क्या रवैया था, क्या सोच थी। हम तो अल्लाह का हुक्म सुनकर सुन हो जाते हैं ना, वो अल्लाह का हुक्म सुनकर चल पड़ते थे, वो कुर्बानियां देते थे, हम कुर्बानियां मांगते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे लिए कुछ करे। बड़ा सफर बहुत छोटे स्टेप से चलता है, जब घर से निकलते हैं तो असल में सफर शुरू हो जाता है, हालांकि मंजिल नहीं दिखती। तो ये खुल्लत की मंजिल मिलेगी कब, जब छोटे छोटे रास्ते के माइलस्टोन हल होंगे। नियत करें और अल्लाह पे नजरें लगा दें, फिर आप देखिएगा कि कितना इंशाल्लाह इससे अल्लाह ताला हम सबके लिए फायदा करेगा। फिर इसी तरह एक और चीज जो हमारे कल के सबक के रेलेवेंट थी, जिसमें हमने देखा था कि ख्वाहिशों और तमन्नाओं से जन्नत नहीं मिलती, तो क्या जन्नत की तमन्ना कर सकते हैं? कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जन्नत की तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए। एक बड़ा मारूफ कॉल राविया बसरी नाम की खातून की तरफ लोगों ने मंसूब किया हुआ है, अल्लाह जाने वो सच है कि झूठ है, कि मैं एक दिन पानी लेकर निकली और दूसरी तरफ आग की एक अलाव था, और कहा किधर जा रही, नुम पे पानी डाल के उसको ठंडा करूंगी और जन्नत को आग लगा दूंगी। क्यों भाई? इसलिए कि लोग कहते हैं कि आप जन्नत को पाने या जहन्नम से बचने के लिए नेकियां करते हैं, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए करती हूँ, ये दीन नहीं है। सूरत सजदा में रात को रोज आप पढ़ के सोते होंगे कि यदून रब्बहुम रगबहुम व रहबा, अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह को रगबत से भी पुकारते हैं और खौफ से भी पुकारते हैं। रगबत किसकी? जन्नत की। और रहब किस चीज का? जहन्नुम का। तो दीन अमल वाला दीन है, सिर्फ बातों वाला नहीं है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम अपने अंदर लेके चलते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि हमने शोहर और बीवी के ताल्लुकात की खराबियों का जो हल था, ये जितना भी कल का हमारा टॉपिक था आयत 128 का, अगर आप इसके साथ एक जुमला ऐड कर लें तो इंशाल्लाह बात बहुत वाजे होगी। आपने समझ तो लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये आयत असल में खुला का अपोजिट है। खुला क्या था? या बीवी रहना नहीं चाहती तो तलाक ले ले। खुला में क्या था? कि जान छुड़ा ले, बस खत्म कर दे, घर टूट जाए। 128 आयत में क्या है? कि छोड़ो, क्या करना है, इसी के साथ कुछ ले दे करके, कुछ हकूक छोड़ दो, कुछ बातें कर करा के तो बच जाओ उस तलाक से जो तुमने लेकर क्या करनी है, उसके बाद तुम्हारा कोई प्लान भी नहीं है, तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए इसी में खैर हो जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब औरत और औरत के नशूस की बात आई थी, तो औरत का नशूस हमने देखा कि मर्द की जो कवामियत है उसको तस्लीम ना करना। और ये जो आयत है जिसमें मर्द की बात हुई है, तो यहाँ लिख लीजिए कि मर्द का कवाम ना बनना। बुनियादी तौर पे ये वही चीजें हैं जो मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ चीजें आपको बोल दूं, ताकि शायद थी कोई चीज आपके पास आ जाए कि ना। फिर एक और दुनिया और सवाब आखिरा। तो दुनिया के सवाब क्या होते हैं? नंबर एक, किसी का काम किया और तारीफ ले ली, इसी तरह कुछ काम करना और उसके बदले में दुनिया का कोई फायदा ले लेना। आप देखिए कि लोग कुरान की आयतों के वज़ाइफ भी जो पढ़ते हैं ना, अमूमन वो दुनिया ही के किसी फायदे के लिए पढ़ते हैं। बेटी का रिश्ता हो जाए, बीमारियों से शफा हो जाए, बरकत हो जाए, फिर इसी तरह दुनिया का सवाब जो है वो इस तरह से भी होता है कि अल्लाह आखरत में जो होना है सो होना है, लेकिन तू मुझे दुनिया में ही दे दे। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया मांगने से रोकता नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि जो नीयत गालिब होगी उतना ही मिलेगा। आखरत को प्रायोरिटी बनाएंगे तो दुनिया खुद बखुद मिल जाएगी, और अगर सिर्फ दुनिया को प्रायोरिटी बनाया तो आखरत नहीं मिलेगी। ये ऐसी है कि जैसे आए बर्मिंगम आ ही जाएगा, गुजर जाएंगे आप उससे, स्टॉप होगा तो उतर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने टिकट ही बर्मिंगम तक का लिया तो फिर आप लंदन कभी नहीं आएंगे। तो हमेशा बड़ा गोल बनाएं, छोटी छोटी चीजें रास्ते में भी खुद ही आएंगी। मोमिन असल में आखिरत के लिए जीता है और दुनिया अल्लाह के सपोर्ट कर देता है, और अल्लाह के सपोर्ट जो चीज कर दी जाए वो कम अज कम इंसान की अपनी कोशिशों से तो बहुत प्यारी मिलती है। इसलिए अगर हम आखिरत का गोल बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला दुनिया हमें खुद बखुद मिल जाएगी। फिर आप देखिए कि इसी आयत से हमें ये भी पता चलता है कि तीन वजूहात की वजह से इंसान अमूमन नेकी करता है। नंबर एक, सिर्फ दुनिया के लिए, मुझे दुनिया चाहिए। दूसरा क्या है कि सिर्फ आखरत के लिए, और तीसरा ये कि दोनों के लिए। सबसे अक्लमंद कौन है जो दोनों के लिए करता है? दुनिया में सही तरीके से नीयत दुरुस्त रखते हुए सही नीयत पर पुख्ता आता रहे, अल्लाह ताला उसको जरूर देगा। समीम बसीरा है क्योंकि दिल के इरादों को भी जानता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे दिल खोल दे और हम इस तरीके से इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में ले आए कि ये हमारी जात का हिस्सा बन जाए, और अल्लाह ताला वाकई हमें खिल्लत के सारे छोटे छोटे स्टेप्स को तय करने वाला बना दे, और अगर इसके रास्ते की कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, तो अल्लाह ताला उसको अलग ले जाए। मुझे इस सबक को पढ़ाने के बाद जो फीलिंग आई वो एक लफ्ज में क्या आती, ख्याली पुलाव, कि सिर्फ ख्याली पुलाव से खा पेट नहीं भरता। इसी तरह सिर्फ नक्शे में कोई नहीं रह सकता, रंग भरने पड़ते हैं। हम जन्नत के ख्याली पुलाव पका लें, इसके सिर्फ ख्वाब देखते रहे, अधूरे और तामीर शुदा घर में यही फर्क होता है कि पहले में लोग रह नहीं सकते, दूसरे में रहना मुमकिन होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम इस दुनिया में रहते हुए जन्नत का घर, इस सोच पे अपनी बात को पूरा करेंगे कि क्या मेरा आखरत का घर सिर्फ ख्याली घर तो नहीं और अधूरा तो नहीं है। गोया के अल्लाह ताला हम सब की खुशफहमियों को पूरा करता है। आइए अगले सबक पे चलते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير। سبق نمبر 65 آیت نمبر 135 سے 147 सूरत निसा 5 to 147 सूरत निसा। आयतों पे जाने से पहले आज के सबक का खुलासा देखेंगे कि इस सबक में हमारे सामने क्या कुछ आने वाला है। आप देखिए कि सूरत निसा के आगाज में दबे हुए लोगों की बात हुई थी कि किस तरीके से ऐसे लोग जो दुनिया में शहादत हक की गवाहियां देने निकले हैं, उन्होंने इंसानियत को इतना खूबसूरत निज़ाम दिया कि इस पे अमल करने के बाद लोग कामयाब होंगे। पूरे सबक के अंदर ऐसे कवानीन थे जिनको आप कह सकते हैं कि अदल पे कायम है। औरतों को हक मिले, बच्चों को हक मिले, औरत और मर्द की बांट हुई। इसी तरह अब सूरत अपने खात्मे की तरफ मायल है। इस सबक में 5वां पारा पूरा हो रहा है और एक दो दिन के बात सूरत भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से अदलिया कवामीन बिल किस्त शुहदा लिल्लाह, ये क्या है, अदल पे बात होगी। दूसरा टॉपिक क्या है, रस्मी ईमान को अमली ईमान में ढालो, जुबान के ईमान को अब अमल के ईमान में ले जाओ। बेयकीनी का ईमान है तो उसको यकीन में बदलो, यानी यहाँ ईमान वालों को ईमान लाने की दावत दी जाएगी। उसके बाद निफाक के मराहिल, इंसान कैसे लम्हा लम्हा मुनाफिक बनता। फिर आयत 139 से आगे कुछ आयतों में निफाक की वजह, रूट कॉज क्या है, और वो कहे गैरों से दोस्ती अल्लाह को छोड़कर।